एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम तर्कशास्त्र यानी लॉजिक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं चौंकाने वाले नजरिए से।
नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं दार्शनिक और तर्कशास्त्री ग्राहम प्रीस्ट के काम की, खासकर उनकी किताबें लॉजिक और लॉजिक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जो आइडियाज हैं उन पे। और ये किताबें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या तर्क का सबसे बुनियादी नियम कि कोई चीज एक ही समय पर सच और झूठ नहीं हो सकती, क्या वो वाकई हमेशा सच होता है।
हाँ, ये सवाल ही अपने आप में मतलब काफी क्रांतिकारी लगता है, और ये सिर्फ कोई एकेडमिक बहस नहीं है, है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। प्रीस्ट के विचार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो जटिलताएं दिखती हैं, विरोधाभासी जानकारी, चाहे वो कंप्यूटर डेटा में हो या कानूनी बहसों में,
हाँ,
और यहाँ तक कि हमारे अपने ख्यालों और विश्वासों की जो उलझने हैं उनको समझने का एक नया फ्रेमवर्क दे सकते हैं।
बिल्कुल, ये हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है और शायद उसे ज्यादा लचीला भी बना सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तहों को खोलते हैं।
तो सबसे पहले, ये ग्राहम प्रीस्ट हैं कौन जिनके विचारों ने मतलब इतनी हलचल मचाई है? वो 20वीं और 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और हाँ विवादास्पद भी तर्कशास्त्रियों में गिने जाते हैं। वो CUNY ग्रेजुएट सेंटर न्यूयॉर्क में दर्शन शास्त्र के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और मेलबर्न विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर भी।
अच्छा, उनकी खासियत क्या है जो उन्हें मतलब इतना अलग बनाती है?
देखिए, उनमें ना गणित की जो कठोरता होती है वो और दार्शनिक गहराई दोनों का गजब का मेल है। वो सिर्फ नियमों को दोहराते नहीं है बल्कि दर्शन की उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर बस मान लेते हैं।
हाँ, बिना सोचे समझे।
उनमें वो साहस है कि स्थापित विचारों को चैलेंज करें। सही कहा, वो पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक के सबसे बड़े पैरोकारों में से हैं। ये वो तर्क प्रणाली है जो विरोधाभासों के बावजूद कह सकते हैं ढहती नहीं उन्हें संभाल सकती है।
विरोधाभासों को संभाल सकती है, ये इंटरेस्टिंग है।
और इससे भी आगे बढ़कर वो डायलेथिज्म के समर्थक हैं, ये विचार कि कुछ विरोधाभास वो वास्तव में सच हो सकते हैं।
क्या सच हो सकते हैं? मतलब वे तर्कशास्त्र की सीमाओं को ही धक्का दे रहे हैं।
बिल्कुल, उनकी किताबें जैसे इन कॉन्ट्रडिक्शन या डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर इसी सोच को दिखाती हैं। वो उन नींव के पत्थरों पर सवाल उठा रहे हैं जिन पर पश्चिमी तर्क परंपरा का बड़ा हिस्सा टिका है।
तो प्रीस्ट की ये किताबें लॉजिक और लॉजिक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मोटे तौर पर किस बारे में हैं?
इनका जो मूल संदेश है वो ये है कि तर्कशास्त्र सिर्फ नियमों की कोई सूखी लिस्ट नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
यह वैधता यानी वैलिडिटी का अध्ययन है, मतलब ये देखना कि कौन से निष्कर्ष दिए गए आधार वाक्यों प्रेमिसेस से तार्किक रूप से निकलते हैं और कौन से नहीं। ये एक तरह की जीवंत दार्शनिक खोज है।
हाँ, ये किताबें तर्कशास्त्र को कोई बहुत जटिल या डरावनी चीज की तरह पेश नहीं करती, बल्कि एक रोमांचक बौद्धिक सफर जैसा दिखाती हैं। प्रीस्ट पहले हमें शास्त्रीय तर्कशास्त्र मतलब क्लासिकल लॉजिक से मिलवाते हैं, वो सिस्टम जो गणित और कंप्यूटर साइंस का आधार है, वो इसकी ताकत दिखाते हैं।
हाँ
लेकिन फिर बड़ी चतुराई से उसकी कमजोरियों और सीमाओं की ओर भी इशारा करते हैं।
बिल्कुल, उनका मुख्य तर्क ये है कि हमारी भाषा, हमारी दुनिया, हमारे विचार ये अक्सर बहुत पेचीदा होते हैं। उनमें अस्पष्टता होती है, संभावनाएं होती हैं और हाँ विरोधाभास भी होते हैं। इन सबको समझने के लिए सिर्फ शास्त्रीय तर्क काफी नहीं है।
सही बात है, हम इससे आगे सोचने की जरूरत पड़ सकती है।
यहीं पर प्रीस्ट वैकल्पिक तर्कशास्त्रों की बात करते हैं, खासकर पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक। और ये किताबें आम पाठक से लेके विशेषज्ञों तक सबके लिए लिखी गई हैं।
हाँ, मतलब अप्रोचेबल है।
हाँ, वो पहले बुनियादी बातें समझाते हैं फिर उन्हें चुनौती देते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये किताबें उठाती हैं वो ये है, जब हम विरोधाभासों का सामना करते हैं अपने डेटा में, अपने कानूनों में, अपनी भावनाओं में, तो तर्क संगत कैसे रहें?
और क्या ये मुमकिन है कि कुछ विरोधाभास सचमुच सच हो? ये बड़ा सवाल है। चलिए अब इन विचारों में और गहराई से उतरते हैं। प्रीस्ट हमें पहले शास्त्रीय तर्कशास्त्र की दुनिया में ले जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो भाग है ना?
हाँ, एक है प्रपोजिशनल लॉजिक जो और या नहीं अगर तो जैसे संयोजक शब्दों और वाक्यों की सच्चाई मतलब ट्रूथ वैल्यूज से जुड़ा है और दूसरा है प्रेडिकेट लॉजिक, जो चीजों और उनके गुणों के बारे में तर्क करने की सुविधा देता है।
ठीक है, और इस क्लासिकल लॉजिक की दो बहुत मजबूत नींव हैं, जैसा आपने बताया।
हाँ, पहली द्विमूल्यता का सिद्धांत, यानी हर बयान या तो पूरी तरह सच है या पूरी तरह झूठ, बीच का कोई रास्ता नहीं,
या तो सच या झूठ बस।
हाँ, और दूसरी गैर विरोधाभास का सिद्धांत, यानी कोई भी बयान एक ही समय में सच और झूठ दोनों नहीं हो सकता। यही वो ढांचा है जिस पर पश्चिमी सोच और विज्ञान का बड़ा हिस्सा खड़ा है।
ये सिद्धांत बहुत शक्तिशाली और उपयोगी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये सिद्धांत कुछ पहेलियों में उलझ जाते हैं।
हाँ, जैसे वो मशहूर लायर पैराडॉक्स।
हाँ, ये तो सुना है।
ये वाक्य झूठा है।
हाँ,
अगर ये वाक्य सच है तो जो ये कह रहा है वो सच होना चाहिए, यानी ये झूठा है। लेकिन अगर ये झूठा है तो जो ये कह रहा है वो गलत है, यानी ये झूठा नहीं बल्कि सच है।
अरे बाप रे, दिमाग घूम जाता है।
थियोरी की नींव हिला दी थी, या सोराइटिस पैराडॉक्स, ढेर वाला विरोधाभास। रेत के ढेर से एक एक दाना हटाने पर वो ठीक कब ढेर नहीं रहता।
कहां पर लाइन खींचे।
सही, ये पहेलियां दिखाती हैं कि शास्त्रीय तर्क के साफ सुथरे हां या ना वाले नियम हमेशा दुनिया की जटिलता, खासकर भाषा की अस्पष्टता और आत्म संदर्भ सेल्फ रेफरेंस को नहीं पकड़ पाते।
तो यहीं प्रीस्ट का सुझाव आता है कि लॉजिक एक टूल किट जैसा है।
हाँ, और जरूरत पड़ने पर हमें नए औजार बनाने या इस्तेमाल करने चाहिए। वो हमें कुछ गैर शास्त्रीय तर्कशास्त्रों की झलक दिखाते हैं जो शास्त्रीय तर्क की सीमाओं से आगे जाते हैं।
अच्छा, जैसे कौन कौन से?
देखिए, संक्षेप में कहें तो कुछ लॉजिक्स संभावना, पॉसिबिलिटी और जरूरत, नेसेसिटी जैसे आइडियाज से निपटते हैं। वो मॉडल लॉजिक है। कुछ अगर तो वाले वाक्यों की बारीकियों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, वो कंडीशनल लॉजिक है। कुछ तर्क प्रणालियां लंबा गरम, जैसे अस्पष्ट या फजी शब्दों के लिए बनी है, जहां सच और झूठ के बीच भी कई स्तर हो सकते हैं, फजी लॉजिक।
ओ, फजी लॉजिक, ये भी सुना है।
हाँ, और कुछ गणितीय प्रमाण पर ज्यादा जोर देते हैं, जैसे इंट्यूशनिस्टिक लॉजिक। ये सब दिखाते हैं कि तर्क करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रीस्ट का सबसे क्रांतिकारी कदम इससे भी आगे है।
हाँ, और वो है पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक।
बिल्कुल, पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक ये ऐसे लॉजिकल सिस्टम है जो विरोधाभासों को कह सकते हैं, पचा सकते हैं, बिना पूरी तरह बिखरे।
बिना बिखरे मतलब?
देखिए, शास्त्रीय तर्क में एक बड़ी समस्या है जिसे विस्फोट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर आप एक विरोधाभास मान लें, जैसे पी सच है और पी सच नहीं है, तो आप उससे तार्किक रूप से कुछ भी साबित कर सकते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, या 2+2=5, पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाता है।
हाँ, ये तो गड़बड़ है।
पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक इसी विस्फोट को रोकता है। ये कहता है कि ठीक है, सिस्टम के एक कोने में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब कुछ बकवास हो गया। ये विरोधाभास को लोकलाइज करता है, उसे वहीं तक सीमित रखता है।
अच्छा, ये तो उन स्थितियों के लिए बहुत उपयोगी लगता है जहां हमें विरोधाभासी जानकारी के साथ काम करना पड़ता है, जैसे किसी बड़े डेटाबेस में या कानूनी मामलों में।
बिल्कुल सही, और इसी पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक से जुड़ा है प्रीस्ट का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और विवादास्पद विचार, डायलेथिज्म।
डायलेथिज्म, हाँ, ये नाम पहले भी आया था, डायलेथिज्म।
ये सिर्फ ये नहीं कहता कि हम विरोधाभासों के साथ तर्क कर सकते हैं, बल्कि ये दावा करता है कि कुछ विरोधाभास, जिन्हें डायलेथिया कहते हैं, वो वास्तव में सच हैं।
एक मिनट, सच मतलब एक ही समय पर सच और झूठ, ये कैसे मुमकिन है? ये तो हमारे सोचने के तरीके के बिल्कुल खिलाफ जाता है।
इसका क्रांतिकारी दावा है। वो कहते हैं कि लायर पैराडॉक्स, ये वाक्य झूठा है, जैसी स्थितियां दिखाती हैं कि कुछ वाक्य सचमुच सच और झूठ दोनों हो सकते हैं।
तो वो इसे गलती नहीं मानते?
वो इन्हें भाषा या सोच की सीमाएं मानते हैं जो शायद वास्तविकता के कुछ पहलुओं को दर्शाती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां विरोधाभास सच हो? प्रीस्ट कहते हैं हाँ। तो इन किताबों और प्रीस्ट के विचारों से हम क्या मुख्य संदेश ले सकते हैं? मेरे लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तार्किक बहुलवाद, लॉजिकल प्लूरलिज्म।
लॉजिकल प्लूरलिज्म मतलब?
मतलब कोई एक सर्वश्रेष्ठ या सही तर्कशास्त्र नहीं है। जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजारों की जरूरत होती है, वैसे ही अलग अलग तरह की समस्याओं या संदर्भों के लिए अलग अलग तरह की तर्क प्रणालियां ज्यादा उपयुक्त हो सकती हैं। शास्त्रीय तर्क अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अकेला समाधान नहीं है।
हाँ, ये बात समझ आती है, टूलकिट वाली बात। दूसरा बड़ा संदेश क्या है?
दूसरा है विरोधाभासों को गंभीरता से लेना। प्रीस्ट का सबसे उत्तेजक विचार कि कुछ विरोधाभास शायद सिर्फ हमारी गलतियां नहीं बल्कि वास्तविकता का हिस्सा हो सकते हैं।
वास्तविकता का हिस्सा?
हाँ, ये हमें विरोधाभासों को देखने का एकदम नया नजरिया देता है, और ये शायद भारत जैसे देश की संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो सकता है, जहां हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के विरोधाभासी मूल्यों, विचारों और स्थितियों को एक साथ जीते हुए देखते हैं।
हाँ, ये बात तो है। क्या ये सिर्फ उलझने हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है, ये सोचने वाली बात है।
तीसरा, शास्त्रीय तर्क की सीमाओं को पहचानना। विरोधाभास, अस्पष्टता, ये सब दिखाते हैं कि क्लासिकल लॉजिक हर जगह फिट नहीं बैठता। ये हमें सिखाता है कि स्थापित ज्ञान और सोचने के तरीकों पर सवाल उठाना जरूरी है, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हों। हमें उनकी सीमाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
सही। और चौथा?
चौथा, तर्क संगतता का मतलब लचीलापन है, रैशनैलिटी एज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रीस्ट के नजरिए से असली तर्क संगतता नियमों के एक सेट से बंधे रहना नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से अपनी तर्क पद्धति को ढालने की क्षमता है।
मतलब अडैप्ट करना।
हाँ, इसमें यहाँ तक कि खैर विरोधाभास जैसे सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर भी सवाल उठाने का साहस शामिल हो सकता है अगर स्थिति की मांग हो।
और पांचवा?
और पांचवा, तर्कशास्त्र और दर्शन का गहरा रिश्ता। ये किताबें दिखाती हैं कि कैसे तकनीकी तार्किक उपकरण गहरे दार्शनिक सवालों को समझने में मदद करते हैं और कैसे दार्शनिक पहेलियां नए तर्कशास्त्रों को जन्म देती हैं। ये सिर्फ गणित या कंप्यूटर विज्ञान का मामला नहीं है। यह वास्तविकता, ज्ञान और विचार की प्रकृति को समझने की एक सतत मानवीय खोज है।
इन किताबों में ऐसे कई विचार हैं जो वाकई रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए कुछ सबसे प्रभावशाली विचारों पर बात करते हैं, मतलब उनके जो कोर आइडियाज हैं।
हाँ बिल्कुल। पहला तो ये, गैर विरोधाभास का सिद्धांत तर्क का कोई अकाट्य नियम नहीं बल्कि वास्तविकता के बारे में हमारी एक गहरी धारणा, मेटाफिजिकल अजम्पशन हो सकता है।
मतलब ये लॉ का नियम नहीं, बस एक मान्यता है।
हाँ, प्रीस यही कहते हैं कि ये दुनिया के बारे में हमारा एक विश्वास है, तर्क का कोई निरपेक्ष कानून नहीं। ये इस विचार को हिला देता है कि ये नियम किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता।
दूसरा?
दूसरा, पैराक्यूसिस्टेंट लॉजिक हमें विरोधाभासों के होते हुए भी तर्क जारी रखने का रास्ता दिखाते हैं, बिना पूरे सिस्टम को निरर्थक बनाए। ये व्यावहारिक समाधान की ओर इशारा करता है।
हाँ, कि विरोधाभास का मतलब हमेशा एंड ऑफ रोड नहीं है।
बिल्कुल, बल्कि एक अलग तरह के तर्क की शुरुआत हो सकता है।
तीसरा और सबसे ज्यादा मतलब चौंकाने वाला?
हाँ वही, कुछ विरोधाभास डायलेथिया वास्तव में सच हो सकते हैं, जो शायद वास्तविकता, भाषा या हमारी सोच की सीमाओं और जटिलताओं को दर्शाते हैं। ये प्रीस्ट का सबसे विवादास्पद दावा है।
यह हमें चुनौती देता है कि हम विरोधाभासों को सिर्फ गलतियों के बजाय शायद सच्चाई के जटिल रूप के तौर पर देखें। मुश्किल है ये मानना।
है तो?
चौथा,
तर्कशास्त्र ये तय नहीं करता कि हमें कैसे सोचना चाहिए बल्कि ये खोजता है कि हम तर्कसंगत रूप से कैसे सोच सकते हैं।
अच्छा, ये पॉसिबिलिटी पर फोकस करता है।
हाँ, ये तर्कशास्त्र के प्रति एक ज्यादा खुले और खोजपूर्ण रवैये को बढ़ावा देता है, नियमों की कठोरता से ज्यादा संभावनाओं पर जोर देता है, जो तार्किक पहुलवाद के विचार से मेल खाता है।
और पांचवा?
और पांचवा, विरोधाभास अक्सर बौद्धिक विफलता के संकेत नहीं बल्कि गहरे अवसर होते हैं जो हमें सोचने के नए तरीके खोजने और तार्किक नवाचार के लिए प्रेरित करते हैं।
मतलब पैराडॉक्स बुरे नहीं, अच्छे हैं
एक तरह से। ये हमारे डर को कम करने की कोशिश करता है, उन्हें समस्याओं के बजाय सीखने और आगे बढ़ने के मौकों के रूप में देखा जा सकता है।
ये विचार वाकई हमें अपनी सबसे बुनियादी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने और दुनिया की जटिलता को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करते हैं।
ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है ना? क्या इन दूर की कौड़ी लगने वाले विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या प्रैक्टिकल दुनिया में भी कोई इस्तेमाल है?
हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्या है इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस?
हैरानी की बात है कि है, और कई क्षेत्रों में जैसे कंप्यूटर विज्ञान और एआई में।
अच्छा, कैसे?
सोचिए, आजकल कितने बड़े बड़े डेटाबेस हैं जहां अलग अलग स्रोतों से जानकारी आती है और अक्सर वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, मतलब विरोधाभासी होती है। पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक ऐसे असंगत डेटाबेस को संभालने में मदद कर सकता है ताकि सिस्टम ठप ना हो।
हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।
और एआई में जब रोबोट को अलग अलग सेंसर से विरोधाभासी सिग्नल मिलते हैं तब भी ये उपयोगी हो सकता है।
ओके, और कहाँ?
कानूनी तर्क में। कानूनों में अक्सर अस्पष्टता या विरोधाभास पाए जाते हैं। दो कानून एक दूसरे के विपरीत लग सकते हैं या गवाहों के बयान आपस में टकरा सकते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक ऐसे मामलों में तर्क करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है जहां किसी एक पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज करना शायद सही ना हो।
और
निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग में, खासकर मैनेजमेंट या पॉलिसी मेकिंग में, नेताओं को अक्सर परस्पर विरोधी लक्ष्यों या हितों के बीच संतुलन साधना पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण संरक्षण।
हाँ, ये क्लासिक डिलेमा है।
प्रीस्ट के विचार हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ऐसी स्थितियों में कोई एक पूरी तरह सही जवाब शायद ना हो और हमें विरोधाभासों को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ सकता है।
और पर्सनल लेवल पर,
व्यक्तिगत समझ में भी, क्या हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे अंदर ही परस्पर विरोधी भावनाएं या इच्छाएं हैं? जैसे हम बदलाव भी चाहते हैं और स्थिरता भी।
हाँ, बिल्कुल होता है।
डायलिथिज्म का विचार भले ही विवादास्पद हो, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये इंसानी होने का हिस्सा है। यह हमें खुद को और दूसरों को समझने में थोड़ी ज्यादा सहानुभूति दे सकता है।
और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए।
हाँ, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे बड़ा फायदा शायद यही है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया हमेशा काले और सफेद में नहीं बटी होती। ये हमें या तो ये या वो, ईदर और की सोच से आगे बढ़कर ये और वो भी, बोथ एंड की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ये जटिल मुद्दों को समझने के लिए हमारे मानसिक औजारों को तेज करता है।
तो मतलब ये सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, ये हमें हमारी उलझी हुई दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और उसमें ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे लिए ये बौद्धिक विनम्रता और खुलेपन का महत्व है। ये स्वीकार करना कि जो हम सच मानते हैं, खासकर तर्क के बारे में हमारी सबसे गहरी धारणाएं, वे भी शायद पूरी कहानी ना हों। सबसे ज्यादा तर्कसंगत होना शायद यही है कि हम जरूरत पड़ने पर अपनी बुनियादी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने को तैयार रहें।
और मेरे लिए ये कि तर्कशास्त्र कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि इंसानी समझ का एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है। ये रीजन की प्रकृति को समझने का एक रचनात्मक प्रयास है। हमें दुनिया की जटिलता, अस्पष्टता और यहां तक कि विरोधाभासों को गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। प्रीस्ट का काम दिखाता है कि चुनौती देने से ही प्रगति होती है।
हाँ, ग्राहम प्रीस्ट हमें दिखाते हैं कि सबसे स्थापित विचारों को चुनौती देकर भी कितनी गहरी और उपयोगी अंतर्दृष्टि मिल सकती है। ये वास्तव में बौद्धिक साहस का प्रदर्शन है।
और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर प्रीस्ट की बात में जरा भी सच्चाई है कि कुछ विरोधाभास सच हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में या दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां दो विरोधी बातें एक साथ सच हो सकती हैं?
कहां हम ऐसे दोहरे सत्यों के साथ जी रहे हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।